सर्वशक्तिमान की संतान हो,
तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।
कौन कहता है महज इंसान हो,
सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान।
प्रॉब्लम्स को बाय और हैप्पीनेस को हाय, इस श्रृंखला में मैं इला आप सभी का वंदन करती हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट के पहले भाग में हमने ये जाना कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन होता है लॉजिकल ब्रेन और राइट ब्रेन होता है क्रिएटिव ब्रेन। अगर इन दोनों का बराबरी से उपयोग किया जाए, बैलेंस तरीके से उपयोग किया जाए, तो हमें उत्तम रिजल्ट मिल सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट के दूसरे भाग में हम एयर सिद्धांत सीखेंगे। यह सिद्धांत बच्चों और युवाओं के लिए अधिक फायदेमंद है, तो इसी के बारे में बात करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बीके तृप्ति जी को। सिस्टर तृप्ति, ओम शांति।
ओम शांति।
तो सिस्टर तृप्ति, ये एयर सिद्धांत क्या है और हमें इससे कैसे लाभ मिल सकता है?
पेरेंट्स से अगर पूछा जाए कि आज उनके सामने सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो कॉमन आंसर जो हमें मिलता है वह है बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को लेसन याद कराना, और बच्चे उस याद किए हुए लेसन को एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकें, यह उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस बढ़ती हुई समस्या का क्या कोई हल है? तो आज हम AIR एयर टेक्निक के बारे में जानेंगे, जिसमें मेमोराइजेशन हमें आसान और इजी फॉर्मूले की तरह अनुभव होगा। तो मेमोराइजेशन माना स्टोरेज, रिटेंशन एंड रिट्राइवल। बच्चे आसानी से किसी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में स्टोर कर सके, जब चाहे जैसा चाहे वैसा स्टोर कर सके। रिटेंशन माना बच्चे स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक अपने ब्रेन में रिटेन कर सकें। जब चाहे जितना चाहे उतनी देर तक उसे याद कर सकें। और जब एग्जाम हो जाए, खत्म हो जाए, उस इंफॉर्मेशन की आगे जरूरत ना हो तो डिलीट बटन दबा के उस स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकें। तो यह था रिटेंशन। और एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो हमें आजकल नजर आता है वह है रिट्राइवल। ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को सही समय पे एग्जाम में सही तरीके से रिट्राइव करना, यह भी चैलेंज हो गया है। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि स्टोरेज, रिटेंशन और रिट्राइवल को हम कैसे आसान बना सकते हैं और अपनी लाइफ्स को, दोनों की, पेरेंट्स की लाइफ को और बच्चों की लाइफ को ईजियर बना सकें।
हाँ, ये सही है सिस्टर तृप्ति। आज इस कंपटीशन के ज़माने में बच्चों की पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। एग्जाम के पहले घर बन जाता है युद्ध भूमि और पढ़ाई बन जाती है युद्ध। तो ऐसे में अगर कुछ ऐसा हो जिससे हमारे पढ़ाई करने वाले बच्चों को लाभ हो पाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो आज हम बात करेंगे AIR, एयर टेक्निक के बारे में। ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनेशन एंड आर स्टैंड्स फॉर रिविजन। अब हम बात करेंगे ए माना एसोसिएशन के बारे में। तो जब भी हम अपने बच्चे को कोई लेसन पढ़ाएं, उसे कोई भी बात हम याद कराने की कोशिश करें, तो हमें क्या करना होगा? हमें उस नई इंफॉर्मेशन को किसी पहले से स्टोर्ड इंफॉर्मेशन से रिलेट करना होगा। तो अगर हम उसे कोई नई बात सुनाएं या नई बात उसको याद करने को कहें तो उस बात को रिलेट करें उस बात से जो वो पहले से ही जानता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसे पढ़ा रहे हैं ओ फॉर ऑरेंज, तो हम क्या करें? उसे ऑरेंज दिखाएं जो वो हमेशा खाता है और तब उसको रिलेट कराएं कि दिस इज ओ फॉर ऑरेंज। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम मूवी देखने जाते हैं और अगर हीरोइन रो रही है तो हम भी उस हीरोइन के साथ रोने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि हम अपने आप को उस कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करने लगते हैं। हीरो हो या हीरोइन, हीरो की जीत के साथ हम अपनी जीत अनुभव करते हैं और हीरो के हार के साथ हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं।
पर सिस्टर तृप्ति, ये भी देखा गया है कि कुछ लोग ज्यादा रोते हैं और कुछ लोग बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, कुछ लोग बिल्कुल नहीं रोते, तो ऐसा अंतर क्यों?
अंतर इसलिए क्योंकि एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन वेरीज। हम अपने आप को जितना ज्यादा एसोसिएट करेंगे उतना ज्यादा हम उसमें खो जाएंगे। कहते भी है ना, किरदार में खो जाओ तो रोल अच्छा कर पाओगे, माना किरदार के इमोशंस को महसूस कर सकोगे। और हम ये भी देखते हैं कि विलेन, हीरो अंत में उसे मार भी देता है, लेकिन विलेन को कुछ होता है तो हम उसका दुख नहीं मनाते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि हम अपने आप को विलेन के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं, इसलिए विलेन के इमोशंस को फील नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को हीरो के साथ एसोसिएट करते हैं तो हीरो के थॉट्स, हीरो की फीलिंग्स, हीरो के इमोशंस हमें टच करते हैं। तो इसी प्रकार जब हम बच्चों को पढ़ाई कराएं तो उनको किसी न किसी चीज के साथ एसोसिएट कराएं, माना थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो यह था एसोसिएशन। अब हम एयर टेक्निक के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आई माना इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। हम बच्चों के लेसन को उनसे जितना इमेजिन करवाएं, जितना विजुअलाइज करवाएं, उसका इम्पैक्ट उन पर ज्यादा देर तक रहता है। हम ही देखते हैं ना, कभी कोई हमारे सामने आता है और हम उसे कहते हैं, आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, पर शायद मैं आपका नाम भूल गया हूं, मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं? और अक्सर ऐसा होता है। वो इसलिए क्योंकि आंखों से देखी हुई बात, आंखों से देखा हुआ चेहरा जल्दी स्टोर होता है, ज्यादा रिटेन होता है और जल्दी रिट्राइव होता है। पर कानों से सुनी हुई बात या फिर पढ़े हुए अक्षर ज्यादा देर तक याद नहीं रहते हैं। इसलिए कहते हैं, जो भी हम बच्चों को पढ़ाएं, उनको विजुअलाइज कराएं। हिस्ट्री का लेसन अकबर का उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता और उतनी जल्दी याद भी नहीं होता। लेकिन जोधा अकबर मूवी, मुगले आजम मूवी, उसमें हमें अधिक इंटरेस्ट भी आता है और वह मूवी हमें ज्यादा देर तक याद भी रहती है। वह इसलिए क्योंकि देखी हुई चीज हमारे मन पर ज्यादा प्रभाव डालती है। तो जब हम मूवी देखते हैं तब क्या होता है, हमारा राइट ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन, वह एक्टिवेट हो जाता है। और जब क्रिएटिव ब्रेन एक्टिवेट होता है तो क्रिएटिव ब्रेन की भाषा क्या है, उसे क्या समझ में आता है, उसे पिक्चर समझ में आते हैं, कलर समझ में आते हैं, मूवी समझ में आती है, फीलिंग्स और इमोशन समझ में आते हैं। तो वो इस भाषा को जल्दी से याद भी कर लेता है, माना स्टोर भी कर लेता है ब्रेन में, उसे ज्यादा देर तक रिटेन भी कर लेता है और जब चाहे तब वह बात हमें याद भी आ जाती है। हम देखते हैं ना, कभी अगर हम ड्राइव कर रहे हो और कोई म्यूजिक ऑन है और अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसके बाद हम जब कभी वह म्यूजिक ऑन करते हैं तो तुरंत हमारे मन में क्या आता है, वो एक्सीडेंट और उस एक्सीडेंट से रिलेटेड घटनाएं, उस एक्सीडेंट से संबंधित दुख दर्द। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये मूवी चल रही है, जब यह सब कुछ ब्रेन में स्टोर हो रहा है, तो उस सीन के साथ साथ म्यूजिक भी स्टोर हो जाता है। सिर्फ स्टोर ही नहीं होता, एसोसिएट भी हो जाता है और इमेजिनेशन भी उसकी स्टोर हो जाती है। तो जैसे ही हम एक इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं, माना म्यूजिक को रिट्राइव करते हैं, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड दूसरी सारी इंफॉर्मेशन भी रिट्राइव हो जाती है, माना उससे एसोसिएटेड दूसरी इंफॉर्मेशन भी रिट्राइव हो जाती है। तो जरूरत क्या है, हम इंफॉर्मेशन को एसोसिएट भी करें और उसको इमेजिन भी करें इस तरह से, ताकि रिट्राइवल हमारे लिए आसान हो। जब हम चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उनको ऐसा इमेजिन करते हैं माना एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो उन सारी जुड़ी हुई बातों को भी रिट्राइव करना आसान हो जाता है और यह सब हमारी पढ़ाई में भी बहुत यूजफुल होता है। तो हमारी पढ़ाई कैसी होती है? इट इज लीनियर इन नेचर। हमारी लेसन्स कैसे होते हैं टेक्स्ट बुक में? इट्स अ टेक्स्ट, सेंटेंस के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद सेंटेंस। अकबर का जन्म हुआ था इस सन में, अकबर की मृत्यु हुई थी इस सन में, अकबर ने यह राज्य हासिल किया इस सन में, अकबर ने युद्ध लड़ा उस सन में, और अकबर का एक बेटा था सलीम जिसका जन्म हुआ इस सन में। तो आज की एजुकेशन प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इज लीनियर इन नेचर। हमें इस लीनियर पद्धति को कहाँ ट्रांसफॉर्म करना है? इमेजिनेशन में। इन डॉट्स को, जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, उन डॉट्स को कनेक्ट करना है, एसोसिएट करना है, और उस एसोसिएशन को इमेजिन करना है। अब हम अपनी पद्धति, जो अभी हम इस पद्धति के बारे में बोल रहे हैं, इसके बारे में हम बात करें, तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे? अकबर एक राजा था। राजा का क्या होता है? राज्य होता है। तो उसका राज्य की सीमाएं इतनी थी, और राज्य क्या यूं ही मिल जाता है? नहीं, उसे लड़कर जीतना होता है। तो उसने इस राज्य को जीतने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े, और उन युद्ध में ये वाला युद्ध, ये वार बहुत इम्पोर्टेंट था। और जैसे कि तुम मेरे बेटे हो, वैसे ही अकबर का भी कोई बेटा था, उसके बेटे का नाम सलीम था। इस प्रकार से तो हम क्या कर रहे हैं अभी, जो लीनियर टेक्स्ट था उसको हम डॉट टू डॉट एसोसिएट करके, उस स्टोरी को इमेजिन करके हमारे लाइफस्टाइल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो वी आर कनेक्टिंग द चाइल्ड, वी आर कनेक्टिंग द थ्योरी टू प्रैक्टिकलिटी।
सही है सिस्टर तृप्ति। तो आज हमने ये जाना कि क्यों बच्चों को फिल्मों के गाने तो याद हो जाते हैं पर टेक्स्ट याद नहीं होता। फिल्मों के गानों में इंटरेस्ट भी बहुत रहता है पर टेक्स्ट में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो इसीलिए अगर वो टेक्स्ट को पहले खुद से एसोसिएट करें और फिर विजुलाइज करें तो उसका फायदा उठा सकते हैं।
तो अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। आर स्टैंड्स फॉर रिविजन। और जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी बात हम बार बार करेंगे तो हमारी बुद्धि में वह पक्की बैठती जाएगी। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से हम कच्चे रास्ते पर अगर चलना शुरू करें तो वही कच्चा रास्ता धीरे धीरे पक्का बनता जाता है। उस कच्चे रास्ते पर पहले हमें चलने में तकलीफ होती थी, पर वही रास्ता बार बार चलने पर इस प्रकार से पक्का हो जाता है कि हमारा उस पर चलना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार से एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट को, इमेजिन्ड ऑब्जेक्ट को अगर बार बार याद किया जाए, बार बार दोहराया जाए, तो वो बात हमारे मन में पक्की बैठ जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुएं में से अगर हम पानी निकालते हैं रस्सी से खींचकर, तो बार बार पानी निकालने से वो रस्सी का निशान उस पत्थर पर पड़ जाता है। तो इस प्रकार रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। AIR की टेक्निक का एक एग्जाम्पल देखें। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑल प्ले एंड नो वर्क मेक्स जैक अ डल बॉय, माना अगर क्वेश्चन हो कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, और अगर उसका आंसर हो प्ले एंड वर्क का बैलेंस रखकर सफलता मिलेगी, अगर ये स्टेटमेंट उनको याद कराना है, तो हम क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे एसोसिएशन से। हम एसोसिएट करेंगे उन सारे वर्ड्स को अपनी रियल लाइफ से। प्ले, प्ले के लिए हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं किसी भी गेम से, फुटबॉल गेम से, क्रिकेट गेम से, जो भी गेम बच्चा खेलता हो। वर्क, जब यह शब्द आता है तो हम उसको एसोसिएट करें किसी भी वर्क ऑब्जेक्ट से, कंप्यूटर के साथ, किताबों के साथ, क्लासरूम के साथ, किसी के भी साथ। तो जब भी हम एसोसिएट करते हैं वर्ड्स को, एसोसिएट करने के बाद उनका पिक्चर देखें, उन्हें इमेजिन करें, उन्हें विजुअलाइज करें। तो खेल के लिए विजुअलाइज करें जैसे बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, और पढ़ाई के लिए विजुअलाइज करें किताबें या फिर कंप्यूटर, और उन दोनों का बैलेंस। बैलेंस से हमें क्या याद आता है? तराजू। तो जैसे कि तराजू के एक पल्ले में है खेलता हुआ बच्चा, दूसरे पल्ले में है पढ़ता हुआ बच्चा, और इन दोनों का बैलेंस, माना तराजू का कांटा सीधे ऊपर हो, और इससे हमें सफलता मिलती है। तो इस प्रकार और इस एसोसिएशन और इमेजिनेशन को बार बार अपने मन में दोहराएं, माना रिवाइज करें। तो इस टेक्निक से जो सेंटेंस था टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ, उसे हमने कन्वर्ट किया पिक्चर में, इमेजेस में, एसोसिएट किया और उसे स्टोर कर दिया, और उसे बार बार रिवाइज ऐसा किया ताकि हमें जब भी याद, अब ये हम जो याद की हुई ये बात है उसे कभी नहीं भूलेंगे। जरूरी नहीं है मुझे टेक्स्ट बुक को रिफर करना एग्जाम के पहले, क्योंकि ये इमेज मेरे मन में हमेशा के लिए बैठ गई है। तो भले ही मैं रिवाइज ना करूं एग्जाम के पहले, पर अगर मैं एग्जाम में जाऊंगी ये सवाल आएगा तो तुरंत मुझे क्या याद आएगा? बैलेंस। और उस बैलेंस के एक पल्ले में खेल, दूसरे पल्ले में पढ़ाई, और तराजू का कांटा सीधा। तो इस प्रकार से ए आई आर यह टेक्निक, माना एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रिविजन, यह टेक्निक हमें यूजफुल सिद्ध होती है।
मेमोरी मैनेजमेंट में हमने अब तक ये जाना था कि ब्रेन के दो भाग होते हैं, लॉजिकल ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन, और आज हमने ये जाना कि किसी भी बात को हमें ब्रेन में परमानेंटली स्टोर करना हो तो उसे स्टोर करने के लिए हमें AIR टेक्निक का सहारा लेना चाहिए। A फॉर एसोसिएशन, अपने आप को अपने विषय से, पढ़ाई से एसोसिएट करें। I फॉर इमेजिनेशन, जो भी आपकी पढ़ाई है, सब्जेक्ट है, उसे विजुअलाइज करें। R फॉर रिविजन, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे निरंतर बार बार लगातार करें जिससे वो सदैव के लिए याद हो जाए। कबीर ने भी यही कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो आज के लिए हमारी मेमोरी प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय। बी के तृप्ति जी ने हमें जो ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसके लिए मैं उनका आभार मानना चाहती हूँ। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। तो कल हम इसी जगह इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।
ओम शांति।
इस ज्ञान में आने के पहले मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन था, किसी की भी बात मुझे सहन नहीं होती थी। अगर कोई कुछ बोलता था तो मैं उसी समय जो भी हाथ में था तो वो तोड़ देती थी। पर जैसे ही ज्ञान मिला, परिवार में मेरे पापा और बड़े भाई इस ज्ञान में चलते थे, वो रोज कहते थे कि आप भी सुनो, 7 डेज का कोर्स करो। जैसे 7 डेज का कोर्स हो गया तो इस ज्ञान में आने के बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं कोई भी कार्य सहज रीति से कर सकती हूँ, और जो आलस्य था वो आलस्य भी निकल गया। इतनी शांत हो गई हूँ कि अगर कोई गुस्सा भी कर लेता है तो भी उसी समय में अपने आप को एकदम शांत स्थिति में वो सुनकर उनको उस प्रॉब्लम के ऊपर राय देती हूँ।
अनादि है शिव, अनंत है जीवन मधुबन, शिव बसंत है मधुबन का स्वयं श्रृंगार।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। सूर्य हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है।
सत्यम शिवम सुंदरम,
यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है।
सत्यम शिवम
समुद्र है हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाएं। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता,
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है।